ਛੱਡਿਆ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में पे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियरमैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियरमैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक। ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक। 416-671-0577।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे। इत्थे मछली, अंडे, दूध, दही ते सस्ते चावल मिलदे। भल्ले पकौड़ियां, ताजा मिठाइयां, गर्म समोसे मिलदे। बटाला सुपर मार्केट,
स्कारपुरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट। बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारबोरो, मार्कम रोड से इंग्लिंटन का संगम। फोन 416-264-3111।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा? अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन, 280 रदरफोर्ड रोड, या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर, या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड, या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
ویلکم بیک تمام سامعین کو جو ہمیں 770 AM ڈائل پر سن رہے ہیں اور ای آواز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید. اور جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ نیوز کا سیگمنٹ ہے, اب سے لے کر 7 بجے تک ہمارے ساتھ شازیہ ملک صاحبہ جو ہیں گرما گرم پکی ہوئی خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لے کر آ جائیں گی, بلکہ اسٹوڈیو آ گئی ہیں. اس کے بعد ہم اسپورٹس کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں 7 سے لے کر 9 بجے تک, منڈے ٹو فرائیڈے آپ ہمیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے. اور جیسا کہ شہزاد جی نے بتایا تھا کہ ایک سپیشل جو ہے, میں صحیح بولا, اور سپیشل جو ہے وہ گیسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیمی فائنل اور فائنل کی تجزیہ دیں گے ہمارے ساتھ, آئی تھنک 27 اینڈ 28, یس بالکل, اور وہ ہوں گے سکندر بخت. سمجھ رہے نہیں, سکندر بخت جی سر, وہ آپ کو نہیں پتا وہ بالنگ کراتے تھے نا, وہی والے سکندر بخت صاحب. تو اگر آپ نے کوئی سوالات ان سے پوچھنے ہیں, کچھ سجیشن دینی ہے ٹیم پاکستان کو, آپ ہمیں نوٹ کرا سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 416-620-1778. لیکن یہ سب چیزیں ہوں گی اسپورٹس کے سیگمنٹ میں, ابھی کوئی مزاق نہیں, ابھی سیریس باتیں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ شازیہ ملک آ گئی ہیں تو میں سیریس ہو رہا ہوں. تھینک یو, ویلکم شازیہ ملک صاحبہ, کیسی ہیں, خیریت سے؟
اچھا میری بات سنو. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. یہ اتنا زیادہ ڈراما کیوں آج کل چل رہا ہے, یہ ڈراما کیوں چل رہا ہے بھائی, چکر کیا ہے یہ اتنا, یہ جو لال شرٹیں اور عشق مرشد اور خوبصورت آدمی اور میری بیوی میرا سونا ہے اور یہ اتنے ڈرامے کہے کو چل رہے ہیں بھائی, کیا چکر کیا ہے یہ, تم بتاؤ ذرا یہ پیچھے کی بیہائنڈ دا سین سٹوری کیا چل رہی ہے تمہاری؟
دس از ناٹ ٹرو.
نہیں ٹرو شروع نہیں, تم کوئی سٹوری آج کل پیچھے بہت چل رہی ہے بیک گراؤنڈ میں, وہ سٹوری بتاؤ, واٹ از دس گوئنگ آن؟
نہیں وہ ایسے کوئی, آئی ایم ویری اوپن. پانی آپ نے دیکھا, پانی کی مثال ہے میری مثال,
اچھا
100% پیور شدھ پانی.
اچھا
کبھی دیکھا؟
شدھ تو تم بالکل نہیں ہے.
اب پانی کی کیا,
انتہائی اشدھ بندہ ہے.
پانی کی ایک سب سے خاص خصوصیت ہے,
اچھا, کہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے.
نو, پانی کو اور مجھے آپ ایک سمجھیں,
ٹرانسپیرنٹ.
نو ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں,
ہاں
پانی کو آپ جس چیز میں ڈالیں گے ویسے ہی ڈھل جاتا ہے.
ہاں مطلب میں تو لوٹا ہے, میں نے تجھے کہا جیسن کہنی, منہ کھولا کر. عامر تم نہیں سدھرو گے, تم کبھی بھی نہیں سدھرو گے, بس آج سے تمہارا نام لوٹا ہے بس.
میں تو آیا تھا کہ اتنی فلاسفی لے کر آیا تھا, میں نے کہا پانی بہتا پانی صاف پانی جس برتن میں ڈالتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے.
بس بس لوٹے میں ڈالا,
میں نے سوچا ہی نہیں تھا.
تم کون سے کوئی انٹل کچول ہو گئے, تم نے ایسا سوچنا تھا؟ یہ ہم جیسے انٹل کچول سوچتے ہیں.
میں نے نہیں سوچا, اس کو لوٹا بھی کہتے ہیں.
ہاں لوٹا بھی کہتے ہیں.
میں تو سمجھا یار کتنی پیاری خصوصیت ہے کہ آپ جو ہیں وہ
بیوی مار رہی ہے تو مار بھی کھا رہے ہیں,
مار لو. ایک ہمارے کولیگ ہیں کنزرویٹو بولے, پتہ نہیں کیا کیا بولے, وہ سن لو
وہ سن لو,
سب کچھ سن لے, مطلب پانی بن جاتا ہے,
پانی بن جاتا ہے بندہ. ہاں لوٹا میں بھی جاتا ہے. چلو یہ تم ذرا ابزارو کرو, یہ جو تمہاری ابھی بیزتی ہوئی ہے. ہاں یہ جو تم نے میرے پہ شاؤٹ کیا نا 2 دن پہلے, یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے, یہ اس کا میں نے جو ہے نا ذرا تمہارے دل کا بھڑاس نکالا تمہارے خلاف, ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اب یہ ذرا تم تھوڑا سا ابزارو کرو اس کو.
میں پانی کا پری,
ہاں ذرا پانی پینے جاؤ تو,
پانی پینا
اور وہ بھی ٹھنڈا,
وہ بھی شدھ پانی,
شدھ پانی جا کے پیو تم, اس وقت تک بھی ہم یہ اپنی جو ہے یہ خربے کرتے ہیں. اچھا جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال, 1400+ تائی بندہ, پتہ ہی آپ کو, مجد بھائی میں اور عامر, تو ان کو آپ ہمیں بلا سکتے ہیں یہاں پہ جب بھی آپ کبھی چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال میں ایونٹ کریں گے. اور یہ دے آر لوکیٹڈ ایٹ 2935 ڈریو روڈ مسز ساگا میں, اور ان کا نمبر ہے 6479653823. تو بہت ہی خوبصورت قسم کے یہاں پہ 32 روم لگژری ہوٹل ہے یہ, تو آپ اپنے ایونٹس یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ ایک کسٹمر اپریسیشن ڈے چل رہا ہے کیو ٹی ایل کا آئے گا یہ June 20th کو. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت زبردست ان کے ہائی اینڈ آئلز ہوتے ہیں جو کہ یہ ٹرکس میں ڈالتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایونٹ جو ہے کر رہے ہیں نیپنی کی لوکیشن کے اوپر, تو 20th June کو آپ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنا آئل چینج کرائیں گے تو آپ کو $75 آف ملیں گے, یعنی ایک بھی نہیں دو بھی نہیں, $75, اور فری باربیکیو یہاں پہ آپ اس کا بھی انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ایگزٹ لیں گے 579 کا ہائی وے 401 پہ, تو پھر آپ جو ہے اگزیکٹلی آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ جائے گا بڑا سارا کوئک ट्रक ल्यूब। इसके अलावा डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, तो यहां पे होती हैं जी डॉक्टर नाजिया रहमान, इनके पास आपने जाना है। अगर आपने मेरी तरह खाने पीने के शौकीन है, बीफ शीफ खाना है, तो दंद आपके बहुत मजबूत होने चाहिए, ठीक है जी। तो आप जाएं इनके पास, डॉक्टर नाजिया रहमान के पास, और डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा पे। और वो कहती हैं जी कि आपको कोई इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप आओ हमारे पास तो और हम आपको हर तरह की सुविधाएं देंगे। तो जो इनका क्लिनिक है 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट E104 पे ब्रैम्पटन में, उसका नंबर है 9058721100। और जो आपका जो है वो एक दूसरा जो इनका क्लिनिक है वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो जहां पे भी आप जाएं इनको आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है जी। और इसके अलावा फिर जब हम अभी अपने क्रिकेट का सेगमेंट शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे हमारे क्रिकेट के प्राउड स्पॉन्सर्स कौन से हैं। कुछ और लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, विच मीन्स कि हमारा ये जो प्रोग्राम है क्रिकेट का ये बहुत शौक से देखा जाता है। और आपने देखा ही होगा कि लड़के जो हैं वो काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स और काफी वर्क करके आते हैं, और खासतौर पर जीशान जो है उसके पास काफी डिटेल्स होते हैं। तो आमिर जो है वो भी आपको पता ही है, क्रिकेट एंथुजियास्ट है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग शो होता है, और फिर हमारे एक्सपर्ट्स भी आते हैं। अच्छा जनाब, पहली आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि ट्रूडो साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो इटली चले गए हैं और वहां पे वो G7 की जो 3-day समिट हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इटली के अंदर अपूलिया का जो एरिया है वहां पे समिट ये जो है होगी, और इसके ऊपर बातचीत जाहिर है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है और जो इसराइल हमास की वॉर चल रही है मिडल ईस्ट में, उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइग्रेशन और कोलैबोरेशन विद अफ्रीका जो है उसके ऊपर है। ट्रूडो साहब जो है वो यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में जो है वो भी अटेंड करेंगे आने से पहले, और फिर उसके बाद ये ओटावा में आएंगे। G7 जो है उसके अंदर कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान है, और ये एनुअली मिलते हैं ताकि जैसे कि एक्सपर्ट्स इनके बारे में कहते हैं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज जो कि ये साथ में काम करते हैं। तो इसके अंदर वो इस तरह उनकी जो है वो ट्रूडो साहब भी कहते हैं कि ये वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम बातचीत करते हैं, बैठते हैं, और जितनी भी जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं बड़ा जो है वो होस्ट ये जो कर रही हैं समिट अपने मुल्क में इटली में फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने शो किया है कि जो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल लीडर है वो ये हैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। क्योंकि आपको पता ही है कि जो अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के जो हुए थे, पोल्स हुए थे, उसके अंदर जर्मनी और फ्रांस जो हैं की गवर्नमेंट्स उनको काफी धचका मिला था, यानी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रों साहब और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को। तो इनकी पार्टी जो है जैसे वो कहते हैं ना लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो वैसी है, काफी स्ट्रांग है। तो जाहिर है कि इनको खुशी है कि ये G7 की मीटिंग अपने मुल्क में अब करा रही है। एक सर्वे आया है, ये आपको पता ही ना नैनोस सर्वे हम आपको बताते हैं, तो नैनोस का जो सर्वे करते हैं उनके जो मालिक है निक नैनोस, उन्होंने कहा है कि ये जो एक टोरंटो सेंट पॉल में ये जो होने वाली है अभी बाय इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें पियर पॉलियाव और ट्रूडो साहब दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, स्टेक्स काफी हाई हैं यहां पे इलेक्शंस होंगे June 24th को। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये जो है ट्रोनो सेंट पॉल की रेजिडेंसी राइडिंग इसके अंदर जो है लिबरल्स का जोर रहा है, और अभी लेटली जो थी कैरोलिन बेनेट जो थी वो थी यहां पर, वो अपनी ये सीट जीत रही थी 1997 से, लेकिन लास्ट ईयर आपको पता ही है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने कहा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी और रिजाइन कर दिया था, और फिर उनको अपॉइंटमेंट उनको दी गई थी डेनमार्क में कनाडा के एम्बेसडर के तौर पर। जो लिबरल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगी लेजली चर्च यहां से, जो कि जिन्होंने के काम किया है जो फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्रिस्टिया फ्रीलैंड उनके एज चीफ ऑफ स्टाफ, इसके अलावा उन्होंने काम किया है गूगल में और UFT में भी। जो कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हैं डॉन स्टूअर्ट, जो कि एम्प्लॉई रहे हैं कनाडा इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के, और इनके पास बिजनेस की और इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं। इसके अलावा बे स्ट्रीट पे इन्होंने काम किया है। NDP के जो कैंडिडेट हैं वो एक नॉन प्रॉफिट में काम कर चुके हैं, अमृत प्रहार, और इसके अलावा जो ग्रीन पार्टी के यहां से हैं वो क्रिश्चियन कुलिस हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर जो है ट्रूडो वेव नहीं चल रही और अगर जो है कंजर्वेटिव जीत जाते हैं तो ये फिर लिबरल पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक जो प्रीमियर डग फोर्ड साहब हैं हमारे, उन्होंने जो अभी लेटली रीशफल किया था अपने कैबिनेट को, उनकी कॉस्ट उसकी वजह से बेतहाशा ऊपर चली गई है कंपेयर टू 2018 जब कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो यहां पे आई थी। डग फोर्ड साहब जो है थोड़े दिन पहले उन्होंने कुछ लोगों के तो जो पोर्टफोलियोज थे अपने वही रखे थे और कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए थे। तो इसके मुताबिक उन्होंने अब जो रिपोर्ट आई है वो कहते हैं कि कैबिनेट का जो अब इंक्रीज हो गई है 72% कंपेयर टू हिज फर्स्ट वन, 36 मिनिस्टर्स हैं, एसोसिएट मिनिस्टर्स हैं और इनकी जो अब सैलरी है वो बेतहाशा ऊपर चली गई है, यानी कि 20% ऊपर गई है फ्रॉम 2018। 32 पीसी एमपीपीज हैं उनके पास, फिर पार्लियामेंट्री असिस्टेंट पोजीशंस हैं जो कि इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 28 इन 2018, यानी कि 2018 में 28 थे अब ये 32 हो गए हैं। ईच एमपी की जो सैलरी है $116,550 है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इनको दी जाती हैं तो फिर और भी इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसको टॉप अप करता है ये जो रेंज है, इस ये है 16,000 से 50,000 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। फोर्ड साहब जो है, जो कि प्रीमियर खुद हैं, वो इस वक्त 208,974 जो है वो डॉलर्स जो है सैलरी ले रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलती है 165,850, एसोसिएट मिनिस्टर्स जो है उनको 138,927, पार्लियामेंट्री असिस्टेंट जो है उनको 133,216 मिलती है। ये जो बेस सैलरी है इसके साथ जो करंट कॉस्ट ऑफ फोर्ड कैबिनेट जो है, दिस अमाउंटेड टू 3.3 मिलियन इन 2018, जो कि अब टच कर रही है 5.7 मिलियन डॉलर्स को। और ये जो टोटल है ये आता था 2018 में 6.9 मिलियन डॉलर्स पे, और अब जो ये 2024 में जो अब आ रहा है ये 10 मिलियन डॉलर्स को टच कर रहा है, विच इज अप 45%। तो जनाब एक तरफ फोर्ड साहब कह रहे हैं मैं कॉस्ट कटिंग कर रहा हूं ताकि मैं बैलेंस बजट पेश कर सकूं, दूसरी तरफ बेतहाशा इन्होंने जो मिनिस्टर्स हैं इनको रख के कॉस्ट जो है उसको बहुत ज्यादा ऊपर लेके चले गए हैं। आज जो एक बहुत अफसोस का वाकया हुआ कुवैत के अंदर, यहां पे जो इनका मंगास का सिटी है उसके अंदर आग लगी जिसके के अंदर 41 लोगों की जो है डेथ हुई है और इसमें से 10 जो थे वो इंडियंस थे। ये जो गैस, ये जो आग लगी थी ये किचन में लगी थी और जो बिल्डिंग के लोअर फ्लोर हैं वहां पर लगी थी। ये 6 स्टोरी बिल्डिंग थी और यहां पे जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स और लेबरर्स जो थे वो रह रहे थे, जो कि ज्यादातर आए हुए थे इंडिया से। इस बिल्डिंग को ओन करता था एक केरला का बिजनेसमैन। थाउजेंड्स ऑफ जो लोग थे यहां पे देखे जा रहे थे, यानी सैकड़े आप कह सकते हैं, थाउजेंड्स तो मतलब वो तमाशाई भी थे जो खड़े देख रहे थे। तो बहुत सारे लोग यहां पे आज देखे गए, फायर फाइटर्स आके बुझाने की कोशिश कर रहे थे यहां पे आग को, और फिर जो 30 के करीब लोग थे उनको इमीडिएटली रश किया गया हॉस्पिटल में। तकरीबन वो कहते हैं 195 यहां पे लोग जो थे इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे। कुवैत के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख फहद यूसुफ साउद अल सबा, उन्होंने साइट का विजिट किया और उन्होंने कहा कि जी फॉरन इंक्वायरी बिठाई जाए। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सारे जो ग्रीडी रियल एस्टेट ओनर्स होते हैं ये कोड की वायलेशंस करते हैं और उसकी वजह से फिर जो है ये बिल्डिंग्स के अंदर आगे लगती हैं और लोगों की डेथ होती है। इंडिया ने इसके ऊपर बड़े अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने भी कहा है इनको कि एक इंक्वायरी जो है बिठाई जाए। तो अब इंक्वायरी जो है यहां पे जनाब बिठाई जाएगी तो पता चलेगा जनाब क्या क्या वायलेशंस थी यहां पे। हमने आपको कल भी बताया था कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अब 8 महीने में 8 चक्कर लगा चुके हैं मिडल ईस्ट का और अब फिर वो मिडल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं और आज भी उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं कतारी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी के साथ। और उन्होंने आज फिर से ब्लेम दिया है हमास को और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल जो है ट्रूस की तरफ ये लोग ले जाने की कोशिश इसको नहीं कर रहे हैं और इसराइल जो है वो तो बिल्कुल मानने को तैयार है। हालांकि हमास जो था उसने, हमने आपको कल भी बताया था कि उसने कहा था कि ठीक है ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हम इसको मानते हैं। अल्बत्ता इसराइल ने कहा था और नतन्याहू साहब ने कहा था कि जिस वक्त तक हम हमास को कंप्लीटली खत्म नहीं कर देंगे उस वक्त तक हम ट्रूस की तरफ नहीं जाएंगे। तो यानी कि ये दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं ये सामने आ रही हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सब कुछ कह रहे हैं, इसराइल कुछ कह रहा है और हमास जो है वो बिल्कुल अलग कह रहा है। इसके बाद जो है इनसे कतर से मिलने के बाद जो ब्लिंकन साहब हैं वो चले गए थे इसराइल, वहां पे उनकी मुलाकातें जो हैं बेनी कैंट्स और येर लिपिट के साथ हुई हैं, और उसके बाद फिर वो जो हैं जॉर्डन में अब गए हैं। गैंट्स साहब जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था इसराइल की वॉर कैबिनेट से और उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन किया था, और ये प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू के मेन राइवल हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि कोई भी यूएस टॉप डिप्लोमेट जो है ऑपोजिशन लीडर से मिले फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर, लेकिन इनसे आज उन्होंने मुलाकातें की हैं, हालांकि उनसे पहले भी ये इनसे मिल चुके हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है नतन्याहू के साथ, क्योंकि जाहिर है कि जो बात उनको कही जाती है नतन्याहू साहब उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीनियर हमास ऑफिशियल उसामा हमदान ने जिस वक्त ये सारी बातें सुनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब की, तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है और इसराइल जो है इनफैक्ट उसने ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, और उसने एक्यूज किया उन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपने क्लोज एलाय इसराइल के साथ मिलकर यहां पे कोई परमानेंट सीज फायर नहीं लाना चाहते हैं और झूठ बोल रहे हैं इस सारी बात के सिलसिले में। व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आज जेक सलवन साहब, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हां हमास ने थोड़े से चेंजेस जो थे वो प्रपोज किए थे, बट वो बहुत ही माइनर है और वो ऐसा नहीं था कि हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, और वो हम एंटिसिपेट कर ही रहे थे, क्योंकि उसके अंदर मेन पॉइंट जो हमास ने कहा था कि रिटन गारंटीज हमको दें कि आप यहां पे सीज फायर कराएंगे और उसके बाद जब ये एक्सचेंज हो जाएगा हॉस्टेजेस का तो लड़ाई फिर नहीं शुरू होगी। इवन जो दो इजिप्शियन सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उन्होंने भी जो मीडिया के साथ बात की है इस बात को एंडोर्स किया है। अलबत्ता ये जो प्रपोजल था सारा ये बाइडन साहब की गवर्नमेंट लाई थी, और कल हमने आपको बताया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस रेजोल्यूशन को पास भी किया था, और अब जो है ये टेबल के ऊपर ही है, लेकिन अब इसराइल जो है इसको मानने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि मुश्किलात इसमें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जाहिर है कि इसराइल के ऊपर आप ज्यादा कर तो नहीं सकते। अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उन पर जोर दे रहे हैं तो वो टेम्पररी सीज फायर कर देंगे जैसे ही हमास उनको अगर हॉस्टेजेस दे देगा, जैसे कि उन्होंने किए थे थोड़े दिन पहले, एक रेड भी की थी और अपने चार हॉस्टेजेस छुड़ाए हैं, तो जब उनको मिल जाएंगे तो वो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे बाकी के भी जो दो चार पैलेस्टीनियंस रह गए हैं, तो इसलिए उनको गारंटीज चाहिए हमास को। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफिस जो है उसने आज कहा है कि क्राइम्स कमिट किए हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इजरायली फोर्सेज और हमास ने भी, यानी हमास ने तो हमें उन्होंने रगड़ा दे देता है ना, इन इजरायली रेड ऑन नसीरात इन सेंट्रल गाजा लास्ट वीक, यानी कि नसीरात के ऊपर इजरायली फोर्सेस ने किया है, तो अगर ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स हैं तो उसमें हमास का क्या लेना देना है। बहरहाल जी दोनों रगड़ना सी उन्होंने, तो यूनाइटेड नेशंस के हाई कमीशन ऑफिस ने यह कहा। इसके अंदर की जो रेड की थी नसीरात में इसराइल ने, उसमें 274 और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी डेथ हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने वहां पे नसीरात के कैंप से जो है चार अपने कैप्टिव छुपा के छुड़ा के ये लोग ले गए थे, लेकिन इस रेड में इतनी खतरनाक थी कि 600 लोग जो थे चिल्ड्रन एंड वुमेन इंक्लूडेड इंजर हुए थे, और जो हॉस्पिटल्स थे उसके अंदर और बेतहाशा पेशेंट्स गए थे। ऑलरेडी आपको पता ही है वहां के हॉस्पिटल्स में ना तो मेडिसिन है ना फूड है ना फ्यूल है ज्यादा। जर्मी लॉरेंस स्पोक्स पर्सन फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टर्क, उनके ऑफिस से उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं ये जो इसराइल ने असॉल्ट किया है सिविलियंस के ऊपर, तो भाईजान किया है शॉक्ड है तो फिर कुछ काम भी करो उसके ऊपर ना जी, ना काम तो हमने करना ही नहीं है। ओवर 10 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं सूडान में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM जो है उसने आज कहा है सिंस वॉर हैज ब्रोकन इन अप्रैल 2023, और ये लड़ाई जो है ये सूडानीज आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट जो फोर्सेज हैं उनके बीच में हो रही है। आज IOM के मुताबिक 7.26 मिलियन लोग जो है अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, 2.83 मिलियन जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी वार्न किया है कि सूडान जो है दुनिया का वर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस और फैमिन जो है उसको फेस कर रहा है। ओवर क्वार्टर ऑफ सूडान 48 मिलियन पीपल जो हैं वो घर छोड़ के जा चुके हैं, 2 मिलियन ने तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी क्रॉस किया है, 3.7 मिलियन खरतूम से एस्केप करके गए हैं। एक साल के अंदर तकरीबन जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई 150,000 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर सूडान टॉम परेलो। बहुत सारे लोग जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना ज्यादा वर्स हो गया कि दिन ब दिन यहां पे मरते चले जा रहे हैं, और जाहिर है कि लोगों का इसकी तरफ ध्यान तो अब नहीं है, सिर्फ यूक्रेन की वॉर और गाजा की वॉर के ऊपर लोग जो हैं अब कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसके अलावा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है टू यमन, वहां पे आज एक बोट सिंक हुई है जिसमें 49 लोगों की डेथ हुई है और 140 जो है वो मिसिंग है, क्योंकि एक बोट जो कि इन सबको लेके जा रही थी वो कैप्साइज हुई है। और इसकी भी इतला जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने दी है। इस वेसल के ऊपर तकरीबन 260 लोग बैठे हुए थे, मोस्टली फ्रॉम इथियोपिया एंड सोमालिया, और ये जो है ये यमन की तरफ जा रहे थे। IOM का कहना है कि 71 लोगों को रेस्क्यू कराया गया था, 8 लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, 6 बच्चे और 31 वुमेन जो हैं दे हैव डाइड इन दिस एक्सीडेंट। इन अप्रैल भी 62 जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी जब 2 शिप रेक्स जो थे वो जिबूटी के पास मिले थे जब ये जा रहे थे यमन की तरफ, और तकरीबन 1860 लोगों की इस रूट के ऊपर अभी तक डेथ हो चुकी है जिसमें से के 480 जो है वो डूब के मरे थे। फिर भी लोग जो हैं वो ये खतरनाक किस्म का सफर करते हैं और ये छोटी छोटी बोट्स के अंदर बैठ के जाना चाहते हैं। आज एक अचानक ही विजिट के ऊपर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की साहब वो सऊदी अरेबिया में पहुंच गए। ये बिल्कुल अनअनाउंस्ड इनका ट्रिप था जो कि ये इसमें ये जो आए थे, इनको जब ये पहुंचे तो इनको सऊदी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सऊदी अरेबिया की और एम्बेसडर टू कीव जो है उन्होंने इनको किया था वेलकम किया था। सऊदी जो है वो बहुत क्लोजली रशिया के साथ काम करता है लेकिन उन्होंने अपनी सपोर्ट रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए दी थी जब ये वॉर शुरू हुई थी फरवरी 2022 में, और बल्कि उसने तो ये कहा था सऊदी अरेबिया ने कि हम एज अ मीडिएटर भी काम करने को तैयार हैं। अगस्त लास्ट ईयर सऊदी ने एक टॉक्स भी होल्ड की थी जिसमें कि 40 कंट्रीज को बुलाया गया था लेकिन रशिया को, हालांकि बड़ा क्लोज एला है इनका, उसको नहीं बुलाया था। ज़ेलेंस्की साहब जो है उन्होंने अरब लीग का समिट भी मई 2023 में जद्दा में जो है वो अटेंड किया था और उसने एक्यूज किया था कि कुछ लोग जो है बिल्कुल दे आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई जो कि रशिया का इन्वेजन जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और इन्होंने सऊदी को विजिट किया था फरवरी में भी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ भी इनकी बातचीत हुई थी फॉर पीस एंड पोटेंशियल प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज के लिए। सऊदी अरेबिया जो है उसने तो अभी तक कुछ कॉन्फर्मेशन दी नहीं है कि ये जो स्विट्जरलैंड के अंदर पीस समिट यूक्रेन के ऊपर हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये वॉर रुके। इस बीच में जब ये मुलाकात चल रही थी तो G7 की जो मीटिंग हो रही है उन्होंने अब उसके अंदर अग्री किया है कि वो यूक्रेन को $50 बिलियन और देंगे, और ये पैसा निकाला जाएगा जो कि सारे का सारा फॉरेन कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रशिया के एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उनको सेल करके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये जो है भाईजान ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी का पैसा किसी को आप दे रहे हैं, आमिर तेरा पैसा उन मेरे को लाना चाहिए सारे दस सारा, समझ आइए। बस अब तो दुनिया ऐसे ही चलेगी, किसी का पैसा किसी को मिलेगा। यस एग्जैक्टली। और जनाब कैलेडन सब्जी फार्म, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय कैलेडन सब्जी फार्म है जी। यहां पे वो कहते हैं हर तरह के प्लांट्स और फ्लावर्स और वेजिटेबल प्लांट्स हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स भी हैं, तो आप उधर जाएं सही एक दफा, ठीक है जी। दे आर लोकेटेड एट 1250 एयरपोर्ट रोड कैलेडन, और वहां पे जाके खूबसूरत फुल सब्जियां, पॉट्स, गार्डनिंग टूल्स, इंडियन तंदूर, मंजी, ढोल ढोल सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे। बस जी मंजी लेकर आए, उस पे लेटे, बच्चे को बोले ढोल बजाए आपको एंटरटेनमेंट करे, बीवी को बोले जी इंडियन तंदूर के अंदर नान लगाओ और बस आप हुक्का पिए और आप मजे करें, हैं जी। अच्छा जनाब, इसके अलावा विलेज टेस्ट, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे, यहां पे आप जा सकते हैं। इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं फैसल जटा साहब के, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में, जाएं और खाने का एंजॉय का मजा लें। जो मिसेस सागा का रेस्टोरेंट है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं 9052323663, और जो ओकविल है उसमें 9052262294 पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी, और जाके आप मजे करें। पीपीपी जो है उसने कल, आपको पता ही है, काफी खफा थी जिस वक्त ये इकोनॉमिक सर्वे मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लेकर आए थे, लेकिन फिर उसके बाद पीपीपी ने अपना जो बॉयकॉट का डिसीजन था कि हम बजट 2024-25 के सेशन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठेंगे वो उन्होंने वापस ले लिया, और इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार को कहा था कि आप इनके साथ मीटिंग करें। फिर उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी पीपीपी के लीडर्स के साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि दो पीपीपी के लीडर्स खुर्शीद शाह और जो शाजिया मरी थे उन्होंने कहा था कि हमको नहीं किया गया। फिर पीपीपी ने डिसाइड किया कि खुर्शीद शाह और नवीद कमर जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पीपीपी को और वो पार्लियामेंट के अंदर ये जो बजट सेशन है उसके अंदर बैठेंगे। और जो है इसके अलावा जो खबरें हैं वो ये भी आई हैं कि पीएमएलएन ने अब अश्योर किया है पीपीपी को कि जो भी कोई आपके रिकमेंडेशंस होंगे वो हम बजट का हिस्सा बनाएंगे। अब पता नहीं उन्होंने बनाया कि नहीं, और आपको जो है बिल्कुल राहत दी जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि कल पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमने जो फार्मर्स के साथ वादे किए हैं वो अगर पूरे ना हुए तो विल बी इन अ वेरी बैड स्पॉट। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने आज अपना पहला फेडरल बजट पेश किया और ये काफी हैवी बजट है। इट इज एट द ट्यून ऑफ 18.9 ट्रिलियन रुपीज, लेकिन ये एग्जैक्टली उन्होंने बनाया है इन लाइन विद आईएमएफ गाइडलाइंस। और ऑपोजिशन के जो लॉ मेकर्स थे, जो नॉट पीपीपी मगर दूसरे जो थे वो तो इनके साथ अलायंस में है, उन्होंने वो नारे लगाते रहे जब औरंगजेब साहब अपना प्रेजेंट कर रहे थे बजट गो नवाज गो के, लेकिन औरंगजेब साहब बिल्कुल कोई परेशान ना हुए और अपनी स्पीच करते रहे। एमएनए जमशेद दस्ती जो है उन्होंने तो वो जो किताब थी बजट की उसको फाड़ दिया, और इसके अलावा जो है उन्होंने पीटीआई ने कहा कि ये जो टैक्स टारगेट आपने लगाया है 12,970 बिलियन रुपीज का, जो कि 38% इंक्रीज है, ये बहुत ही क्रूअल मूव है और ये आप कैसे लोगों के साथ लेंगे, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। तो बजट जो है उसमें जो मेन चीजें कही गई हैं, एक तो वो ये है कि 3.6% जीडीपी ग्रोथ का हम वादा करते हैं, इसके अलावा 13 ट्रिलियन रुपीस के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो एफपीआर को हमने टारगेट दिया कि वो इकट्ठा करें। पेट्रोल लेवी जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है बाय 20 रुपीस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, 25 रुपीस ऑन सुपीरियर केरोसिन ऑयल, लाइट डीजल, हाई ऑक्टेन E10 गैसोलीन। इसके अलावा बजट डेफिसिट जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया है 6.9% ऑफ जीडीपी। इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग, उसको बिल्कुल जीरो रेट के ऊपर किया गया है, और उसके ऊपर जो बड़ी राहत मिली है लोगों को, जो कि काफी दिनों से ये डिस्कशन चल रही थी। इसके अलावा जो टैक्स एग्जम्पशंस दी जा रही थी इंपोर्ट ऑफ हाइब्रिड एंड लग्जरी ईवीज के ऊपर, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और इसके बाद अब जो सिंध चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, वो अपना बजट पेश करेंगे 14 जून को, और वो उसमें प्रपोज कर रहे हैं 10-15% इंक्रीज इन सैलरीज ऑफ सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि आपको पता ही है कि सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं बड़े गरीब हैं, तो उनको पैसे लोगों से ज्यादा चाहिए, तो बस वो फिर अब उनको दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर दूसरे भी जो बजट्स हैं प्रोविंशियल बजट्स बाकी के भी आने शुरू होंगे। पीटीआई की कल हमने आपको पूरी खबर सुनाई थी कि अब वो खान साहब राजी हो गए हैं कि वो अब बात करेंगे, तो उसी सिलसिले में आज उन्होंने अनाउंस किया है कि पश्तून का मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन जो है महमूद खान अचकजई थ्रू तहरीक तहफ्फुज आइन अलायंस, वो जो है अब जाके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जाके बात करेंगे, और बातचीत जो है वो इसी सिलसिले में होगी कि जितने भी पीटीआई के जेल्ड लीडर्स और वर्कर्स हैं उनको छोड़ा जाए, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज जो हैं वो सेट की जाएं जुडिशरी के लिए, और पार्लियामेंट्री और अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी बाउंड्रीज सेट की जाएं। पीटीआई के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इन टॉक्स का हिस्सा होगी, और आपको पता ही, हमने आपको कल बताया था कि बैरिस्टर गौर साहब ने कल कहा था कि जो है इमरान खान साहब वो राजी हो गए हैं और उनकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, वो सबको माफ करने को तैयार है, और हम सबके हमने हमेशा कहा कि हम हर किसी के साथ बात करेंगे, तो अब भी हम करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अचकजई साहब को जो है अब ये काम दिया है। ये खबर हमें लोग जो है कल फोन करके पूछ रहे थे कि शायद कोई पाकिस्तानी जिनके पास डुअल नेशनैलिटीज है उनको शायद अब पाकिस्तान जो है पासपोर्ट नहीं देगा, ये बिल्कुल गलत खबर थी। आज जो हमने फाइंड आउट किया है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट से, उनका हमने देखा है कि जी उन्होंने कहा है कि हम उनको पासपोर्ट्स इश्यू नहीं करेंगे जो असाइलम सीकर्स हैं। आज जो अपना इन्होंने लेटर भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानीज असाइलम के लिए बाहर के मुल्कों में अप्लाई कर रहे हैं या जिनको ऑलरेडी असाइलम भी मिल गया, यानी कि जो असाइलम पे जा रहे हैं मुल्क से बाहर, उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हुए आज जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट है उसने कहा जी कि ये स्टेप हमने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एंड अंडर इंटरनेशनल कमिटमेंट, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि असाइलम्स बाहर जाके लेते हैं जिनका के जिनका के जो है वो कैटेगरी जो है वो जो गलत किस्म के जो एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर आता है, वहां पे असाइलम लेने के बाद वो फिर भी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो रिटेन करते हैं और मुल्क को इसमें बैड नेम जाता है। तो इसलिए अब वो सब लोग जो कि अब बाहर असाइलम ले लेंगे और लोगों को जाके बोलेंगे जी कि पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है, तो अब उनको फिर बिल्कुल पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये है करेक्ट खबर, ये नहीं है कि जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है उनको नहीं दिया जाएगा पासपोर्ट, ये बिल्कुल गलत खबर है। ठीक है जी, ये कल हमें आ रहे थे ना फोन, ये पूछ रहे थे लोग, है ना आमिर?
हाँ, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ आ जाता है।
हाँ, सोशल मीडिया पे तो गलत खबरें आ रही थी कि अब जी मिलेगा नहीं पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और ड्यूअल नेशनलिटी शायद खत्म कर रहे हैं इंडिया के, कोई ऐसा कुछ
रियल न्यूज ये है जो
रियल न्यूज ये है। हाँ जी, अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर हालांकि गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है मोदी जी की, लेकिन फिर भी जो है काफी अभी भी ऑपोजिशन के साथ लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी जी जो हैं आज उन्होंने फिर से मोदी जी के ऊपर जो है वो आज किया है, क्रिटिसाइज किया है, एंड राइटली सो, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते थे गांधी फैमिली को, ओ जी ये तो बड़ा डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको बड़ा बढ़ावा देते हैं और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं और हम तो गरीब के बच्चे को ऊपर लेकर आए हैं। तो आज गांधी जी ने जरा मोदी जी को रिमाइंड करवाया है, उन्होंने कहा जी कि आप तो बड़ा कहते थे कि हमारा ट्रेडिशन जो है वो स्ट्रगल, सर्विस और सेक्रीफाइस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप तो अब सरकारी परिवार बनाते चले जा रहे हो। तो सरकारी परिवार का उनका मतलब था, उन्होंने कहा जी कि आप तो नेपोटिज्म के खिलाफ बोलते थे और आप कहते थे कि ये जो परिवार मंडल अब आपने एनडीए में जमा कर लिया है, ये तो बहुत सारा ये जो परिवार मंडल है उसके अंदर डायनेस्टिक जो फैमिलीज के बच्चे हैं वो भी हैं। उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि एचडी कुमारा स्वामी जो कि फॉर्मर पीएम थे हिंदुस्तान के, एचडी देवे गावड़ा उसके बेटे हैं, इसी तरह ज्योतिंद्रित्य शिंडिया वो हैं बेटे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर माधव राव शिंडिया के, किरण रिजिजू वो बेटे हैं फर्स्ट प्रो टर्म स्पीकर ऑफ आंध्र प्रदेश रिचिन खारू, रक्षा काटसे डॉटर इन लॉ हैं फॉर्मर महाराष्ट्र के मिनिस्टर अखनाथ खाटसे, जयंत चौधरी जो हैं वो ग्रैंडसन हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के, चिराग पासवान बेटे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर राम विलास पासवान के, जेपी नड्डा सन इन लॉ हैं फॉर्मर एमपी और मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर थे जयश्री बैनर्जी के। तो इसलिए हमको आप ज्यादा ब्लेम मत दो। इसके अलावा जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स बैक टू बैक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करते हुए गांधी जी ने कहा कि आप दुनिया सारी से ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस ले रहे हो और आपको होश ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, तो मुल्क के लोग जो हैं आपसे आंसर्स चाहते हैं इन टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर। आपको तो चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं उन फैमिलीज की जो डिवोटीज जो जा रहे थे यहां पे जिनको कि ब्रूटली मर्डर किया गया है, क्योंकि तीन दिन में तीन टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं इन रायसी, कथुआ और डोडा के इलाके के अंदर। तो आप तो अपने सेलिब्रेशंस में मसरूफ हैं और यहां पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर इन चार्ज ऑफ मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा जो हैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया है प्राइम मिनिस्टर की साइलेंस को इन मामले में, और उन्होंने कहा जी कि आपकी तो जो सीरियसनेस है कश्मीर वैली पे वो तो यही शो करती है कि आपने तो बॉर्डर तक नहीं किया कश्मीर वैली से इलेक्शन लड़ने का, और ये जो आपका नया कश्मीर पॉलिसी है ये बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मोदी जी जब से आपने गवर्नमेंट संभाली है 19 टेररिस्ट अटैक्स इंडिया के ऊपर हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे हुए हैं, एक तो हुए थे सीआरपीएफ के कैंप पे, फिर आर्मी कैंप्स पे, फिर एयरफोर्स के स्टेशन पे, फिर मिलिट्री स्टेशन इन पुलवामा, बंबूर, उड़ी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा अटैक, संजवान आर्मी कैंप और पुंछ के ऊपर जिसके के अंदर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आप किन ख्यालों में हो और आप क्या भारत की तरक्की की बात कर रहे हो? हैं जी आमिर साहब, की हो रहे हैं? हैं जी, हमसे सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे भैया ऐसी बात ना करो, ऑलरेडी इंडिया बड़ा खिलाफ हुआ है पाकिस्तान के,
फिर दोस्ती हो जाएगी ना।
अच्छा दोस्ती हो जाएगी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो
आपको अपने जैसे दोस्त बनाना होता है ना।
हाँ हाँ,
आपके जैसे जब हो जाएंगे सब दोस्ती भी हो जाएगी।
अच्छा अच्छा, वाजी वाह, बड़ी फिलोसफी चढ़ी है आपने।
थैंक यू,
क्या बात है, आप तो आज बड़ी फिलोसफी के आमिर, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी ये फिलोसफी जो है ना ये उल्टी नहीं तुम्हारे पे पड़ी, शुक्र कर लो। अच्छा अच्छा जनाब, फॉरवर्ड लोकसभा के जो एमपी हैं प्रज्वाल रिवाणा, उनके ऊपर जनाब रेप के और सेक्सुअल अब्यूज के बहुत सारे जो हैं वो केसेस आगे हैं और आज स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो है एसआईटी उन्होंने इनको अपनी कस्टडी में लिया और उन्होंने कहा जी कि हम इनको जून 18 तक रखेंगे क्योंकि रेप्स जो हैं बेतहाशा फिर से हाई हो गए हैं इंडिया के अंदर। जो तो जो मोदी जी की ये बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसके ऊपर आज फिर से ऑपोजिशन ने बहुत सारे सवाल यानी कि या फिर जो बहुत सारे जो एकेडेमिक्स और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आवाज यहां पे उठाई है। इसके अलावा एक 70 ईयर ओल्ड मैन है उसने भी एक माइनर बच्ची को रेप किया एक विलेज के अंदर। वो उसकी लड़की की मां ने कहा कि उसने मेरी बच्ची को अगवा किया और एक हट जो है उसमें लेके चला गया। जब बच्ची ने चीखें मारी जब ये इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो आसपास के लोग आए उन्होंने इस आदमी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। बच्ची जो है उसको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अब हॉस्पिटल में भेजा गया है। इसके साथ साथ एक 14 साल की बच्ची जो है उसको भी अलेजली गैंग रेप किया गया है और कमरे में बंद रखा दो दिन के लिए। इसका जो जुवेनाइल बॉयफ्रेंड था उसने इसको बुलाया झारखंड के डंडाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को भी बुलाया एक दिन के बाद। सबने मिलकर इसको लड़की को रेप किया और उसमें से एक लड़का इसकी मोबाइल पे वीडियो बनाता रहा। जब इस लड़की ने चीखें वगैरह मारी और ज्यादा शोर मचाया दूसरे दिन तो आसपास के लोगों को जब कुछ आवाज आई तो वो आए उन्होंने बचाया इसको लेकिन उस वक्त तक लड़के जो थे वो यहां से भाग चुके थे। इन सब लड़कों के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की गई है धानसर पुलिस स्टेशन के अंदर और अब पुलिस जगह जगह पे रेड्स डाल रही है इन सबको पकड़ने के लिए। तो अफसोस के जो ये रेप के वाकयात हैं हिंदुस्तान में चलते ही चले जा रहे हैं ऐसे हैं। अच्छा जनाब ये जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने तकरीबन 7,745 एंटी टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर किए हैं फ्रॉम अप्रैल 1 टू जून 10। सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट ऑपरेशन किए गए थे वो बलूचिस्तान के अंदर थे 4,902, केपी के अंदर 2,702, सिंध के अंदर 142। सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उन्होंने तकरीबन 181 टेररिस्टों को मारा 128 इन केपी 51 इन बलूचिस्तान 2 इन सिंध। मई के महीने में उन्होंने 42 टेररिस्ट मारे थे केपी में न्यूट्रलाइज किए थे 12 इन बलूचिस्तान 61 मिलिटेंट्स जो था उनको पकड़ा था इन दोनों प्रोविंसेस के अंदर इन मई। इसके अलावा 7 टेररिस्टों को मारा था और 2 को अरेस्ट किया था जब ये इन्फिल्ट्रेट यानी कि घुसने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में जोब बॉर्डर जो अफगानिस्तान का है उसमें इस तरह से इन्होंने 5 टेररिस्टों को गन डाउन भी किया था ये भी कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में घुसने की पिशिन और किला अब्दुल्ला के इलाके से। 2 सुसाइड बॉम्बर्स इंक्लूडिंग एन अफगान नेशनल उसको भी और उसके हैंडलर को भी अरेस्ट किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसके अलावा बहुत सारा इनसे असला और एम्युनिशन भी जो है वो भी ढूंढा इनके पास से 4 सुसाइड जैकेट्स और 14 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी मिली हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा तकरीबन 12 लोगों को डीआई खान में यानी कि टेररिस्टों को और टैंक में 19 को नॉर्थ वजीरिस्तान में। और इसके अलावा जो टीपीपी के टेररिस्ट जो कि इन्वॉल्व थे बिशम अटैक में चाइनीज के खिलाफ इन मार्च उनको भी बहुत सारों को पकड़ा है एंड नाउ दे आर फेसिंग केसेज इन कोर्ट्स। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि तकरीबन 40 हाई कैपेसिटी वैगन्स जो हैं उनको आज पाकिस्तान रेलवेज का हिस्सा बनाया गया है और वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे वैगन्स जो थे ये पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ये वैगन्स जो हैं इनकी आज ओपनिंग सेरेमनी थी कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर लाहौर में और ये अब कैरी कर सकेंगे 70 टन्स ऑफ जो है वो लगेज ऑल्सो। रेलवे के जो सीईओ हैं आमिर अली बलोच उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा मेजर स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये ट्रेन जो है इसकी स्पीड भी बेतहाशा बढ़ाई गई है और अब ये जो फ्रेट ट्रेन्स हैं ये चलेंगी 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। इसके अलावा 820 सच कोचेस जो है उनको इंडक्ट किया जाएगा रेलवे सिस्टम के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और उन्होंने कहा जी कि इससे फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बचत आएगी और इनकम भी ऊपर जाएगी और रेलवेज की इनकम जो है वो 9 बिलियन रुपीज पर ईयर को टच करेगी। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इनको तैयार किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फ्रेट स्टैंडर्ड्स तो बड़ी जबरदस्त तरीके से इसको किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज सलमान खान और उनके भाई जो हैं अरबाज उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं जो इनके घर के बाहर जो बांद्रा में मुंबई में जो इनके गैलेक्सी अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर अप्रैल 14 को जो गोलियां चलाई थी कुछ लोगों ने उस सिलसिले में। इसमें उन्होंने रिवील किया था कि ये जो अरेस्ट किए हैं उन्होंने उनको कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो था इसके अंदर शामिल था। मुंबई पुलिस ने जो है वो इन्वोक इसलिए किया है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। उन्होंने कहा जी पुलिस ने कि बिश्नोई का जो भाई है अनमोल उसने मेन रोल प्ले किया था इन शूटर्स को मोटिवेट और हायर करने के लिए। उसने आर्म्स जो थे वो पनवल में लिए थे मार्च 15 को और फिर उन्होंने शूटर्स को सारी जो है टारगेट की यानी कि सलमान खान की इन्फॉर्मेशन दी थी और कहा था कि जाके फायरिंग करो और इन शूटर्स को जो है 3 लाख रुपए इसके लिए दिए गए थे। तो उस सिलसिले में अब ये पूछताछ जो है चल रही है। ये जो स्टोरी अभी बता रहे थे अरफाबाजी जतिन ललित ये जो दो म्यूजिक कंपोजर्स हैं हिंदुस्तान के उसमें जो इनके जो साथी हैं जतिन नहीं बल्कि ललित साहब जो हैं ललित पंडित उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो नदीम शरवन अगेन नदीम अख्तर और शरवन कुमार ये दो इनकी भी जोड़ी है म्यूजिक कंपोजर्स की जो कि ये म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो उस पे इन्होंने लतिन पंडित ने कहा कि आशिकी के लिए महेश भट्ट की ये जो म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें के राहुल रॉय और अनु अग्रवाल थे और बड़ी जबरदस्त जो है 90s की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक ये थी जिसके के गाने बेतहाशा मशहूर हुए थे धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए नजर के सामने जिगर के पार और ये फिर जो है ये सारे ये जो गाने थे जाने मन तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। तो वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे जो गाने हैं ये पाकिस्तानी जो है वो ट्रैक्स से चोरी किए थे। अब इसका इन्होंने सिस्टम क्या बताया इन्होंने कहा जी कि जिस वक्त इनको महेश भट्ट साहब ने कहा कि तुम जो है मेरी फिल्म आशिकी के लिए गाने बनाओ तो नदीम साहब जो है वो बहुत ज्यादा दुबई के चक्कर मारने लगे और दुबई से वो बेशुमार पाकिस्तानी कैसेट्स उठाकर ले आते थे उन गानों की पाकिस्तानी गानों की कैसेट्स दुबई से लेकर आते थे और फिर हिंदुस्तान में आके उनको रिप्रोड्यूस करते थे। वो कहते हैं जी ये तो कोई हैरत की बात ही नहीं है सारी इंडस्ट्री को इस चीज का पता है क्योंकि हमारा इंडियंस का एक खास स्टाइल है जो म्यूजिक बनाने का और वो हमारे स्टाइल में रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि मेरे और जतिन के स्टाइल में। तो आपको फौरन पता चल सकता है कि ये इंडियन स्टाइल का गाना है तो इनके जो गाने थे उनसे फौरन पता चलता था कि ये हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के स्टाइल के गाने नहीं हैं और ये दुबई से जाके पाकिस्तानी फिल्मों के और गानों के कैसेट्स लाके और उनके ऊपर फिर जो सारे गाने फिर ये लोग कंपोज करते थे। तो विच इज शुक्र है जी पहले किसी बंदे ने माना तो है कि पाकिस्तानी गाने आप चोरी करते हैं वरना तो कुछ लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है फिल्में भी बनती हैं गाने भी बनते हैं पैन व्हाट इज दिस। आपके सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त सबसे बड़े नाम ही पाकिस्तानी सिंगर्स के आप माने या ना माने हैं जी। अच्छा जी अच्छा जनाब एंड बिग 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 न्यूज फॉर ऑल द पंजाबी एंड दिलजीत लवर्स दिलजीत दोसांझ इमेजिन करें नन अदर देन जिमी फैलन का जो शो होता है द टुनाइट शो उसमें अपीयर होने वाले हैं। बट आई वंडर के दिलजीत पाजी को तो अंग्रेजी आती नहीं है तो ये कैसे उसके साथ बात करेंगे बहरहाल अपने फनी स्टाइल में शायद लोगों को हंसाएंगे वहां पे। तो ये जहां जनाब वहां पे शामिल होंगे उनके शो के अंदर और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर दिलजीत ने कुछ तस्वीरें भी डाली और लिखा पंजाबी आ गया ओए और उसके बाद उन्होंने जो इस वीक की सारी जो लिस्ट है जो कि वहां पे और आने वाली है वो है एडी मर्फी केविन कॉस्टनर और मैटी मैथिसन वो भी होंगे और दिलजीत पाजी भी होंगे। कल का जो एक मैच जो कि 8:30 बजे चल रहा था जिसकी हम आपको डिटेल्स नहीं दे सके थे वो था ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया वर्सेज नमीबिया। ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया को 5.4 ओवर्स में ही वो जो उनको टारगेट मिला था 73 का वो पूरा कर लिया था एट विव रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ के अंदर और अब जो है वो टॉप ऑफ द टेबल पे है विद 6 पॉइंट्स और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 8 के लिए। डेविड वार्नर जो है वो जो थे वाहिद ऑस्ट्रेलियन बैटर थे जिसको कि नमीबिया ने डिसमिस किया था और लेकिन फिर भी उन्होंने स्कोर किया था 8 बॉलों पे 20। ट्रेविस हेड जो थे उन्होंने बनाए थे 34 मिशेल मार्च ने 18 और दोनों ही अनबीटन रहे थे। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर एडम जंपा जो थे उन्होंने तो बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की ही बिकेम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू क्लेम 100 विकेट्स इन T20 और उन्होंने 4 विकेट ली थी फॉर 12 इन 4 ओवर्स अगेंस्ट नमीबिया। तो इस तरह से जी ऑस्ट्रेलिया जो है इट हैज ऑलरेडी सेल्ड थ्रू टू सुपर 8 स्टेज। और जनाब क्या करें, दिल के गम ही बड़े हैं। फिर आमिर ने मेरे ऊपर जो है वो चीखना है, लेकिन ये स्टोरी तो हमने आपको सुनानी है। आमिर की मतलब है परवाह कौन करता है, छोड़ो आमिर को। अच्छा जी, आपको पता ही है कि सोशल मीडिया आजकल बड़ा जो है वो हो गया है, यू नो, जालिम हो गया, ब्रूटल हो गया है। जिस दिन आमिर साहब पाकिस्तान इंडिया से किस दिन हारा था बताओ जरा मुझे, किस दिन हारा था इंडिया से पाकिस्तान? संडे वाले दिन आ रहा था,
दिन भी याद नहीं अब तो।
हाँ, तारीख याद है, संडे को क्या तारीख थी? जून
नाइन जून,
ठीक है, जून नाइन पाकिस्तान इंडिया से मैच आ रहा था। एन उसी दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जो लान तान की है कि विकेट कीपर बैटर आजम खान साहब, उधर टीम हारी और लोग अफसोस कर रहे थे, और वो न्यूयॉर्क के अंदर बर्गर एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे।
तो ठीक है ना, जो उसका काम है वो कर रहा है ना। हाँ। आप अपना काम सही कर ही नहीं रहे।
आमिर की सड़ी हुई बात आ गई। आमिर फिर से सड़ गया। ये आमिर को सड़ाने के लिए मैंने ये खबर डाली थी।
भाई वो अपना काम कर रहा है। हाँ जी, उसको करना है।
तो उन्होंने कहा जी कि आजम खान साहब बजाय इसके कि टीम के साथ बैठते अफसोस करते या कुछ, यानी कि जाहिर है कि गम करते, वो जी उन्होंने कहा टीम हारती है तो आ रहे भाड़ में जाए, मेरा क्या लेना है, वो जी निकल गए बर्गर खाने के लिए। तो वहां पे जनाब ये बैठ खड़े होके बर्गर खा रहे थे, जबकि बाकी टीम जो है, नसीम शाह हमारा मुन्ना जो है वो रो रहा था, है वो रो रहा था। और जनाब मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने रोहित शर्मा का T20 रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया है, इक्वल किया है, उससे आगे नहीं गए, बराबर कर लिया है। जब पाकिस्तान खेल रहा था कनेडा के अगेंस्ट और पता नहीं कैसे जीत गया था, और लेकिन रिजवान ने 53 मारे थे, तो अब रिजवान और रोहित दोनों ने जो है वो सरपास किया है, 30-50+ स्कोर्स इन्होंने बनाए हैं एज ओपनर्स इन T20। इसके अलावा बाबर जो है वो सेकंड नंबर पे हैं इस लिस्ट में विद 28-50+ स्कोर्स एज ओपनर। ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर जो है थर्ड है इस लिस्ट के ऊपर विद 27-50+ स्कोर इन T20 क्रिकेट, आई मीन ऑफ कोर्स। और जनाब आज जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था, आमिर ने क्या कहा था? USA जीतेगा। हमने क्या कहा था? हिंदुस्तान जीतेगा। तो वैसे ही हुआ, इंडिया ने आज डिफीट किया USA को बाय 7 विकेट्स, लेकिन अगेन बहुत रो रो के जीता है इंडिया। फिर USA ने बहुत जबरदस्त गेम खेली, लेकिन अगेन आज इधर बड़ा हिस्ट्री क्रिएट की है अर्शदीप सिंह ने, 4 विकेट्स फॉर 9 बॉल्स उन्होंने लिए हैं, एंड ही हैज बिकम द बेस्ट एवर इंडियन बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20। तो एज अ रिजल्ट इंडिया जो है वो अब ग्रुप ए के अंदर टॉप कर रहा है विद 6 पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने अपनी तीनों गेम्स जीती हैं, और USA जो है नंबर 2 पे है विद 4 पॉइंट्स। US के जो पेसर थे सौरव नेत्रावलकर, उन्होंने कोहली को आउट किया है गोल्डन डक के ऊपर, तो ही हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू डिसमिस कोहली ऑन गोल्डन डक इन द T20 हिस्ट्री। तो उन्होंने भी बड़ी जी हिस्ट्री क्रिएट की है, और ऑल्सो इस T20 के अंदर इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम के कोहली जो है वो 4 कंसेक्यूटिव जो मैचेस हैं उसके अंदर सिंगल डिजिट के अंदर आउट हुआ है, यानी 3 ये और 1 उससे पहले का जो मैच है जो कि इस साल के शुरू में हुआ था। तो 3 जो है वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस और 1 जो ईयर के शुरू में हुआ था उसमें कोहली साहब जो हैं गोल्डन डक पे या आउट हुए हैं या फिर उन्होंने सिंगल डिजिट में ही रहे हैं। सबसे पहला मैच जो उनका था जिसमें डक पे वो आउट हुए थे, दैट वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसके अलावा जो 3 T20 के अभी मैचेस हुए हैं उसमें पहले मैच में 4 पे आउट हुए हैं, दूसरे मैच के अंदर 1 पे आउट हुए हैं, और आज 0 के ऊपर आउट हुए हैं, जो कि इट विच इज वेरी अनलाइक किंग कोहली। कोहली आप अंडे पे भी आउट हुए तो भी आप मेरे फेवरेट रहोगे, हैं जी। और आज का जो दूसरा मैच है वो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में है, और वो शुरू होएगा 8:30। तो जब 8:30 पे शुरू होएगा तो जितना भी हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे उसकी न्यूज जो है वो हम आपको बताएंगे। तो ये थी हमारी
खबरें, और इसमें छोटी सी बिल्कुल बारीक सी करेक्शन, स्लिप ऑफ टंग होता है, 9 बॉल्स नहीं 9 रन्स हर्षदीप सिंह ने दिए, 4 ओवर कराए, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जाहिर है पढ़ने वालों के माने का कर दें ताकि कल को ना करें कि जी आपको तो पता ही नहीं था। नहीं जी सब पता है, सम टाइम स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो 4 ओवर कराए उन्होंने, 9 रन दिए, और 4 ही खिलाड़ी को अपने घर भेज दिया। ये थी आज की
खबरें, गर्मा गर्म
खबरें। अब जो है वो टाइम भी हमारा ब्रेक का होने वाला है। अच्छा आज जो आप बात कर रही थी, देखिए मेरे नजदीक अगेन जो यूएसए की टीम है बहुत जबरदस्त,
बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा। यानी इंडिया जैसी टीम को अगर उन्होंने इतना टफ टाइम दिया है, इतना
देखिए 18.2 ओवर तक ये भी गए, ऐसे नहीं कि इन्होंने, देखिए एसोसिएट टीम्स के साथ जो ब्रूटल हो रहा है ना वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है।
यस यस यस, वो बैशिंग कर रहा है,
वो बता रहे हैं कि एसोसिएट टीम के साथ
कि मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ,
मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ।
हाँ,
अगर आप यहाँ इंडियन
मैं ही हूँ,
हाँ आप कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा, पांड्या, अक्षर पटेल, पैंट,
पंत
पंत कह लें, पैंट कह लें, जो भी कह लें, भजन चाहे पैंट हो या पंत हो, अच्छा खेलते हो, विकेट कीपर भी अच्छी हो, ठीक है, आप ये लेवल के बैट्समैन हैं और बिल्कुल
बहुत टफ टाइम दे रहे हैं
आपको जो है वो, ठीक है उन्होंने रन भी कम किए, 110 रन कुछ
110 किए इनको, 111 का उन्होंने दिया टारगेट,
लेकिन 18.2 ओवर्स तक आपको भी ले जाना पड़ गया। पहली बॉल पे जो है वो किंग कोहली आउट हो जाते हैं, वेरी उस नेक्स्ट ओवर में जो छक्का मारते हैं रोहित शर्मा साहब हिट करते हैं अगली बॉल उस पर वो भी आउट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एसोसिएट टीम्स के साथ जो हमारी साउथ एशियंस की जो टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें इंडिया भी शामिल है,
क्योंकि यूएसए ने, आप याद रखें कि यूएसए ने हराया था पाकिस्तान को, आप सोचें
देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बैट्समैन को भी प्रेशर रहा है। वो जो पिच की बात हो रही है, ठीक है पिच का भी हाथ है, लेकिन देखिए बड़ी टीम में तो बड़ी टीम में यही तो अपना बड़ा बताती है, बड़ा बड़ी टीम में क्यों
मैं बाप क्यों
कि मैं किसी भी जगह पर जो है वो प्ले करूंगा।
यस,
लेकिन यहाँ जो है इंडियंस टीम ने आज जीत गए,
रो रो के जीते, मैंने अभी तो कहा तो है कि रो रो के जीते,
बहुत ज्यादा रो
के जीते। आज तो मुझे पता नहीं है कि अब सुनील गावस्कर साहब अब इनकी फिर से क्या बैशिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के मैच के बाद उन्होंने कितनी इनकी बैशिंग की थी कि तुम लोग जो है रो रो के जीते और पाकिस्तान ने तुम्हें प्लेट में रख के ये विक्ट्री दी है तो तुमको मिल गई है।
वो बात वही जो सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडियंस हमेशा से, जब से हम भी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, बैटिंग लाइन हमेशा से स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप पर भी आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक सवालिया निशान।
लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना आमिर, तुम कहते हो कि मैं 1945 में पैदा हुई हूँ, बल्कि मैंने देखी है वो जंग जो है वो देखी है, तो मैं तो चूंकि उस जमाने की हूँ ना, तो इसलिए मैं जरा थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको ट्रेस कर दूं कि इंडिया की टीम जो है वो गांगुली के बाद अच्छी हुई है। शारजा में तो हमने देखा है सेवन ईयर्स बैक टू बैक पाकिस्तान ने इंडिया की टीम को हराया,
ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही,
हाँ ऐसे है ना, तो उनकी अगर वो अच्छी थी ना तो दूसरी तरफ वाले भी बहुत अच्छे थे, दूसरी तरफ वाले भी बहुत अच्छे थे, तो अभी क्या हो गया है,
ज़हीर अब्बास, जावेद मिर्ज़ा, सलीम मलिक, सलीम यूसुफ, इमरान खान, सलीम जाफर, ये अब्दुल कादिर,
हाँ
मुझे अभी फौरन याद आ रहे
हैं, तौसीफ बॉलर जो था,
ये पाकिस्तान के लिए खेलते थे।
हमारा
प्रॉब्लम वही हो गया जिसमें मुझे गुस्सा आ जाता है कि आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, आपके ऊपर सब कुछ किया जाता है, लेकिन जरा सी पॉलिटिक्स और उसके चक्कर में आप,
और आमिर तुम सोचो कि क्रिकेट को फ्लरिश हमने करने के लिए इस मुल्क में बाकी तमाम गेम्स के फंड्स हमने काट लिए हैं, है ना,
अब हो क्या,
हॉकी को बर्बाद कर दिया,
बर्बाद हो गई, स्पोर्ट बर्बाद हो गया,
लेकिन फिर भी इस दफा लड़के कितना अच्छा हॉकी वाले खेले हैं, वॉलीबॉल की टीम ने हराया सबको, जीती है, ऑस्ट्रेलिया तक जैसी टीम को हराया वो जीते हैं, हमारी रोइंग में जो लड़कियां गई थी कराची से उन्होंने रोइंग में सेकंड जो है वो, तो यानी आप दूसरी तमाम गेम्स को निग्लेक्ट कर रहे हो फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं। स्क्वाश वालों को देखो जरा, उनका जरा वो स्क्वाश कोर्ट जाके देखो जरा, रोना आएगा आपको जहां पे बेचारे वो खेलते हैं, फिर भी
कोई फैसिलिटीज नहीं,
कोई फैसिलिटी, सारी हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है क्रिकेट के ऊपर है, बस क्रिकेट डेवलप हम कर रहे हैं, लाखों
क्या डेवलप कर रहे हैं,
लाखों रुपया इन लड़कों को दे रहे हैं, और ये भी इनकी परफॉर्मेंस है, बंद करो इनकी अकेडमी, बंद करो ये क्रिकेट, बाकियों के ऊपर स्पेंड करो यार, ताकि वो वहां पर टैलेंट आपको नजर आ रहा है ना, तो उनको जरा डेवलप आप करो।
बिल्कुल ठीक है जनाब, ये सिर्फ एक टीजर है हल्का सा, क्योंकि अब ट्रेलर और पूरी फिल्म आप कुछ ही देर के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे कैसर सगीर साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी काफी अच्छे से जो है स्पोर्ट्स को कवर करते रहे पाकिस्तान में भी और यहां पर भी कवर करते रहे, हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन जो है कैसर सगीर शामिल होंगे। ऐसा करते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जिशान हमारे साथ आ जाएंगे, अपनी सीट संभालेंगे और कैसर सगीर को भी जो है हम डायल करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 4166201778, आपकी नजर में क्या चांसेस है पाकिस्तान की टीम के सुपर एट में आने के, तो अपना थोड़ा सा
जीरो जो है जीरो
वो आप निकाल सकते हैं, आके हमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलें एक टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं।
जीरो,
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो। क्विक ट्रक लूब हर साल दी तरह ट्रकर वीरां दा धन्नवाद करदे होए इस साल भी 20 जून नूं अपनी नैपली लोकेशन ते ट्रक ऑयल चेंज ते देणगे $75 दा डिस्काउंट। जी हां, सही सुनया, $75 दा डिस्काउंट, फ्री ट्रक रीस ते फ्री बारबेक्यू। तां फिर पहुंचो 20 जून नूं क्विक ट्रक लूब, एग्जिट 579 ऑन हाईवे 401 ते पाओ $75 दा डिस्काउंट। 519-622-0660 519-622-0660 क्विक ट्रक लूब नैपली लोकेशन।
ओए, एक ब्लॉकबस्टर प्लान बनाइए, पूरी मस्ती मजे नचना गाना हो जाए।
ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਰੋਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त